ब्रह्मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता त्रिविशाखान्वितास्य। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरशुम्भायमनः खसादय यन्ने च पापायदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवीष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टो प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अध्याय 9 शीर्षक है मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। श्लोक संख्या 24। देवलिंग प्रतिच्छन्न है स्वर भानु है। अब ऐसे बोलते हैं जी शब्दार्थ। पुनः बोलिए। देवलिंग प्रतिच्छन्न है स्वर भानु है देव संसदी प्रविष्ट है सोमम अपिबत
चंद्र अकारभ्याम च सूचित है, देवलिंग प्रतिच्छन्न है, स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्ट सुमं पिबत, प्रविष्ट है सुमं पिबत कारभ्याम, चंद्रा कारभ्याम च सूचित है, चंद्रा कारभ्याम च सूचित है, देवलिंग प्रतिच्छन्न है, स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्ट सुमं अपिबत, चंद्राकारभ्याम च सूचित है, देवलिंग प्रतिच्छन्न है, स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्ट सुमं पिबत, चंद्राकारभ्याम च सूचित है।
पुनरावृत्ति करें।
देवलिंग प्रतिच्छन्न है, स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्ट सुमं पिबत, चंद्राकारभ्याम च सूचित है,
वही माता जी। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ तथा अनुवाद एवं व्याख्या। शब्दार्थ,
देवलिंग प्रतिच्छन्न है, देवता के वस्त्र से अपने को आच्छादित करके स्वर्भानु है राहु ने, देव संसदि देवताओं के समूह में प्रविष्ट है घुस करके सोमम अमृत, अपिबत पी लिया, चंद्र अकारभ्याम चंद्रमा तथा सूर्य दोनों के द्वारा च तथा सूचित है बतला दिए जाने पर। अनुवाद, सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा, किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। पुनरावृत्ति करें, सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। तात्पर्य, मोहिनी मूर्ति रूप भगवान सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए, किंतु राहु इतना चतुर था कि वह मोहित नहीं हुआ। वह समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही है, अतएव उसने अपना वेश बदल लिया। उसने देवता का छद्म वेश बना लिया और देवताओं के समूह में जा बैठा। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए। कारण यह था कि भगवान अमृत पीने का मजा चखाना चाहते थे। यह अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदैव सतर्क रहते थे, अतः जब राहु देवताओं के समूह में प्रविष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और तब भगवान भी उससे सतर्क हो गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रस्तुत श्लोक में देवता और दानवों का वर्णन है। सूर्य और चंद्रमा ये देवता हैं, राहु असुर है, वो आसुरी कुल का है। तीन पात्रों का यहां वर्णन किया गया है और भगवान मोहिनी स्वरूप में है। सूर्य और चंद्रमा और राहु तीनों का परिचय हम जाने। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी प्रकृति और आसुरी प्रवृत्ति वालों के लक्षणों का वर्णन किया है। जो देवता होते हैं उनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं और जो असुर होते हैं उनमें निम्नलिखित दुर्गुण पाए जाते हैं। देवतुल्यों में प्रायः 26 गुण पाए जाते हैं। जैसे गीता के 16वें अध्याय के शुरुआत में भगवान वर्णन करते हैं, अभ्यम सत्व संशुधिर ज्ञानम योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्यवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्व लोलुप्तम मार्दोम हरीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोह अनीति मानिता भवंती संपदम देवीं अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा कि निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञप्रायणता, वेदा अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभविहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। और असुरों के दुर्गुणों का वर्णन किया, उसके लक्षण का वर्णन किया कि जो असुर होते हैं, दंभो दर्प अभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। वे दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विद्रासुरा न शौचम न पीचाचारो न तस्यम सेतु विद्यते। जो असुर होते हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न पवित्रता रहती है न उचित आचरण और न सत्य पाया जाता है। भगवान ने कहा कि इस संसार में दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, इस प्रकृति के आंगन में दो प्रकार के सृजित प्राणी हैं, एक दैवी प्रकृति वाले और एक आसुरी प्रकृति वाले। तो दैवी प्रकृति में देवता आते हैं जो 33 करोड़ माने गए हैं। तो देवता जो है वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं और प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। और जो असुर होते हैं वे भगवान के विरोधी होते हैं, वे प्रकृति के नियमों का या भगवान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करते, वे भगवान के विरोधी होते हैं। तो यह जो प्रकृति है गुण और गुणों से सनी हुई है, इसमें देवता भी रहते हैं और दानव भी रहते हैं। इस जगत का ऐसा नियम है, दिन है तो रात है, संयोग है तो वियोग है, राग द्वेष ईर्ष्या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी इस भौतिक संसार में लोग रहते हैं, पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक। तो देवता जो है भगवान के भक्त हैं, तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप की धर्म पत्नी अति थी, अति और दिति नहीं की पत्नियां हैं, तो अदिति से देवता हुए। कश्यप जी के पुत्र विवस्वान जिन्हें सूर्य कहा जाता है, सूर्य एक ग्रह है जिस पर सूर्य देव शासन करते हैं, सूर्य एक लोक है, चंद्र एक लोक है, राहु एक लोक है, ग्रह है। तो सूर्य देव विवस्वान का मतलब होता है सूर्य का राजा। गीता का ज्ञान भगवान ने सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के दिया। इक्ष्वाकु महाराज मनु महाराज के छीक से पैदा हुए थे जो अयोध्या के राजा बने, और इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उसमें एक निमि महाराज आते हैं, मिथिला का वंश और अयोध्या का वंश, इसके सब ये सब सूर्य वंश में आते हैं। ये प्रकाश विभाग के पदाधिकारी हैं। और चंद्रमा ये भी देवता है, तो ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि की धर्मपत्नी अनुसुईया महारानी, तो अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुड़वा, पुरुड़वा हुए आहु, आहु के पुत्र नहुष, नहुष के हुए याति, याति के पुत्र जदु, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण आए, सूर्य वंश में राम जी आए और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए। ये देवता है, भगवान के भक्त हैं। तो सूर्यदेव सारी दुनिया को ये प्रकाशित प्रकाश देते हैं, और सूर्य और चंद्रमा, सूर्य भगवान के नेत्र माने जाते हैं, नयन दिवाकर कचघनमाला, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, ये सारे संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं। चंद्रमा भगवान के मन माने जाते हैं, चंद्रमा मनसो जाता, और ये दोनों नेत्र हैं, एक दिन के नेत्र हैं एक रात के नेत्र हैं, एक दिन में प्रकाश करते हैं, दोनों प्रकाश करते हैं, एक दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाश करता है, चंद्रमा से भी अमृत का स्राव आता है। अब प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है कि सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया। राहु जो है, राहु का परिचय इस प्रकार दिया गया है,
हिरण्यकश्यपु वो आप सभी जानते हैं, प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु हैं, और हिरण्यकश्यपु की बहन है सिहिका, उसको हम होलिका भी कहते हैं। सिहिका का विवाह विप्रचिति दानव से हुआ था, तो उसके सिहिका के 101 पुत्र थे, तो जो सबसे बड़े पुत्र थे उसका नाम था राहु, और जो 100 पुत्र बचे उसे केतु कहा जाता है। तो राहु असुर है, और जब भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करके श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, हरे कृष्ण। राहु जो है ये छद्म भेष, कपटी भेष धारण करके, इन्होंने देवता का रूप धारण करके देवताओं के पक्ष में बैठ गया। जो भगवान का मोहिनी स्वरूप है, ये असुरों को मोहित करने के लिए धारण किया गया था। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। समुद्र मंथन की लीला में भगवान ने 4 अवतार को धारण किया, अजित भगवान, फिर कच्छप अवतार, फिर धन्वंतरी अवतार जो अमृत का कलश लेकर के आए, और चौथा में मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार भगवान ने इसलिए धारण किया, जो आश्री स्वभाव वाले होते हैं वे किसी दूसरे का हित नहीं चाहते, ये स्वार्थी होते हैं, बहुत स्वार्थी। जब भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरगण भगवान के हाथों से अमृत का कलश छीन लिए और आपस में झगड़ा करने लगे, मैं पीऊंगा। देवताओं को भगवान पहले से सतर्क रखे थे कि समुद्र मंथन से बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होंगी, तुम लोग शांत रहना। लेकिन असुर घबरा गए, भगवान के हाथों से छीन लिए। तब भगवान ने सोचा, जब हमारे हाथों से अमृत का कलश छीन लिए तो मैं ऐसा स्वरूप धारण करूंगा कि तुम लोगों के हाथों से स्वयं छीन लूंगा, अपने आप तुम लोग मुझको दे दोगे। तो भगवान ने आकर्षक स्वरूप धारण किया, मोहिनी स्वरूप मतलब ठगनी स्वरूप। असुरों को ठगने के लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया, और जब मोहिनी असुरों के सामने आई तो असुर लोग मोहिनी के स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गए, झगड़ा छोड़ दिए और अपने आप अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिए। तो मोहिनी ने एक शर्त रखा, मैं जो कहूंगी मेरी बात को मानोगे? असुर स्वीकार कर लिए, हाँ मानेंगे। उसके सौंदर्य से असुर मोहित हो गए। अगर मोहिनी की बात को विरोध करेंगे तो मोहिनी को अपना पत्नी नहीं बना सकते, उसका उपभोग नहीं कर सकते, इसलिए वे विरोध नहीं किए। मोहिनी जो भी कहती गई चुपचाप स्वीकार करते थे। तो मोहिनी ने कहा, ठीक है, ये देवता तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें एक ही पिता के पुत्र हो, मैं देवताओं को पहले थोड़ा पिला देता हूं, बाद में तुम लोगों को पिलाऊंगी। और इस बात पर सहमत हो गए, मेरा विरोध मत करना किसी बात को, कि नहीं हम लोग विरोध नहीं करेंगे। अब मोहिनी जाती है, दोनों देवताओं को एक तरफ पंक्ति बैठाया और दानवों को एक तरफ, सब स्नान करके पवित्र होकर के बैठे थे। मोहिनी असुरों को टच करते हुए देव पंक्ति में गई और देवताओं को अमृत पिलाने लगी, और असुर चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं। तो उस जब भगवान देवताओं को मोहिनी स्वरूप से अमृत पिला रहे थे तो असुरों की पंक्ति में राहु बैठा हुआ था, राहु। तो वो समझ गया कि हम लोगों को अमृत मिलने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी इस भाष्य में लिखते हैं, यहां वर्णन है कि उस स्वरूप से मोहित नहीं हुआ, वो समझ गया कि मोहिनी अब हम लोगों को अमृत नहीं पिलाएगी, इसलिए छद्म भेष अपने स्वरूप को वो बदल लिया और देवताओं का वस्त्र धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, वेश बदल लिया। और जब मणि अमृत पिलाने लगी तो देवताओं को पिलाते पिलाते जब राहु के पास आई तो सूर्य चंद्रमा वहीं बैठे थे, मुख में डाल दिए थे राहु के। सूर्य चंद्रमा बोले, प्रभु ये तो राहु है, राहु तो केवल कंठ तक गया था उसका, और अमृत केवल कंठ तक गया था। भगवान तुरंत चक्र निकाले और चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिए। धड़ तो इसी ही रह गया और जहां तक अमृत का प्रभाव था वो सिर अमर हो गया, वो नहीं मरा। तो राहु एक ग्रह है, एक लोक है, ब्रह्मा जी ने उसे राहु एक ग्रह बना दिया। तो सूर्य और चंद्रमा जो बताए थे कि ये राहु हैं, ये असुर हैं, तो ये जो राहु है ये सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है, माने बताने का बदला लेता है कि तुम लोगों ने क्यों बताया कि असुर हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि सूर्य चंद्रमा बताते तभी वो जानते। इसमें वर्णन है कि वो तो अमृत का मजा चखाना चाहते थे, ये तुम असुर हो और देवता के समाज में आए हो, यह अमृत तुम्हारे लिए नहीं है, ये देवताओं के लिए है। भगवान सब कुछ जानते थे लेकिन वो एक लीला किए, उसके सिर को धड़ से अलग कर दी। तो सिर तो अमर हो गया, ब्रह्मा जी ने उसे एक राहु लोक बना दिया। अच्छा अब देखिए, अब धड़ बच गया। तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जो धड़ बच गया उसी धड़ से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति है, असरी स्वभाव तमोगुणी पदार्थ है। उसको धरती में गाड़ दिया गया तो मांस से प्याज हुआ, हड्डी से लहसुन, तो लहसुन प्याज तमोगुणी पदार्थ है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो राहु का जो सिर था वो राहु लोक हो गया। तो अब यहां ये शिक्षा लीजिए, जो असुर होते हैं वे रूप बदलने में बहुत प्रवीण होते हैं, देवता भी रूप बदलने में प्रवीण होते हैं, असुर मायावी होते हैं, देवता भी मायावी होते हैं। लेकिन याद रखें, देवताओं से असुर बलिष्ठ होते हैं, देवताओं से असुर बलिष्ठ होते हैं। और दूसरी बात यह है कि देवताओं का जो आहार है वह आहार अमृत है, अमृत का वर्णन मैं पिछली बार किया था। अमृत को पान करने से मनुष्य दीर्घायु बनता है, बहुत दिनों तक रहता है, लंबी आयु को प्राप्त होता है। यहां सोमम शब्द का प्रयोग है, सोमम पिबत, सोम माने होता है अमृत, देवता सोम रस का पान करते हैं। तो अमृत देवताओं का आहार है और असुरों का आहार है, असुरों का आहार तो शराब है, अमृत असुरों का आहार नहीं है। और मुख्य बात यह है कि भगवान देवताओं को अमृत पिलाना चाहते थे, असुरों को नहीं। क्यों? क्योंकि अगर असुर अमृत पान कर लेते तो और अधिक शक्तिशाली हो जाते और अधिक उपद्रव मचाते, सर्पों को दूध पिलाने के समान हो जाता। सर्प के पास तो विष रहता ही है, दूध पिलाए तो उसका विष और वर्धक होगा। तो भगवान असुरों को दूध अमृत नहीं पिलाना चाहते थे, केवल देवताओं को पिलाना चाहते थे, क्योंकि अमृत देवताओं का आहार है, वही उनका भोजन है। देवता डालडा नहीं खाते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वर्ग लोक से उर्वशी आई थी, महाराज पुरुड़वा के सौंदर्य का बखान नारद जी के मुखारविंद से सुनकर के वह आकर्षित हो गई और वह भूलोक में आई तो पुरुड़वा महाराज के आकर के वो केवल घी पीती थी, राइस दाल साग सब्जी नहीं खाती थी, केवल घी पीती थी, पौष्टिक आहार को ग्रहण करती थी। तो इस संसार में दूध अमृत है, घी अमृत है, पंचामृत आप लेते हैं ना, दूध दही घी को ग्रहण करने से मनुष्य की आयु लंबी होती है। तो घी अमृत है, इसलिए देवताओं को हवन दिया जाता है आहुति घी से, शुद्ध घी से, इसलिए जहां तक अधिक हो सके शुद्ध घी लानी चाहिए। डालडा देवता नहीं ग्रहण करते। तो छद्म वेश बना लिया, जैसे रावण ने सन्यासी असुर है ना, सन्यासी का वेश बनाकर सीता जी को किडनैप किया। देखिए ये वेश बनाने में बहुत चतुर है। मारीच ने, जो रावण का मामा लगता था, वह कालनेमी बनकर के हनुमान जी का मार्ग रोक दिया था। कपटी महात्मा बनकर के हनुमान जी का मार्ग रोकना चाहता था, जो संजीवनी विद्या बूटी लाने के लिए जा रहे थे। कपटी वेश, कपटी महात्मा बन गए। पुतना भी लक्ष्मी का स्वरूप बनाई और भगवान को विश्वभर आसन पिलाने लगे, मारी गई। ये असुर अंत में मारे जाते हैं। कालनेमी कली कपट निधान, कालनेमी महात्मा माने कपटी महात्मा भी संसार में है। आप हरे कृष्ण आंदोलन में कपटी महात्मा भी आते हैं। कपटी महात्मा आते हैं तो उनका पहचान क्या है? अति भक्ति चोरे लक्षण। ज्यादा भक्ति दिखाएगा, ज्यादा नम्रता दिखाएगा। अभी नया नया आया, इतनी भक्ति कहां से आ गई? तो समझिए कि कपटी है। एक बार भक्त लोग बता रहे थे, यहां पर एक लंबा झूल पहन करके एक भक्त आया, चतुर्भुज पर बैठे हुए भक्ति कला क्षेत्र में, और लंबा झूल पहन के वो महात्मा आया था। उसके पास मास्टर की थी, वो चाबी रखा था ऐसा, वो चाबी से किसी भी ताला को खोल सकता था, किसी भी लॉक खोल सकता था। रहने के लिए इसी भक्ति कला क्षेत्र में दिया गया, उसमें और भक्त रहते थे। भक्त रूम को ऐसे बंद करके बाहर निकले, उसने अंदर से लॉक नहीं किया। तब तक वो महात्मा आ गए, थोड़ा समय में आए तुरंत घूमकर, तो देखते हैं क्या वो अपनी मास्टर की से अटैची को खोल दिया है। वो कालनेमी था और सामान मतलब निकल रहा था। कालनेमी झूल पाना है साधु का, सन्यासी का, और महात्मा वैष्णव के समाज में आया है वेश बदलकर, सामान चुराने के लिए, ठगने के लिए। ठगवा भगत, कालनेमी मतलब ठगवा भगत, बगुला भगत। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इसलिए आईडी मांगा जाता है रहने के लिए स्कैन, बिना उसका बैकग्राउंड जाने किसी भक्त को नहीं रखना चाहिए। तो राहु भी छद्म वेश, अपना वेश बदलकर देवता का स्वरूप बना लिया, और देवता का स्वरूप बना करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और अमृत तो पी लिया, लेकिन जहां तक अमृत गया वहां तो अमर हो गया। लेकिन इसमें यह वर्णन किया गया है कि सूर्य और चंद्रमा बता दिए भगवान से कि ये राहु है। अगर किसी का आप भेद जानते हो, याद रखिए, और उस भेद को यदि आप बताएंगे, जानते हैं और बताएंगे, तो आप उसका शत्रु बन जाएंगे। जैसे मारीच रावण का मामा लगता था, और सीता जी को जब अपहरण करना हुआ तो रावण मारीच के पास आया। लंका का राजा था और मारीच को प्रणाम किया। मारीच समझ गया कि कुछ बात जरूर है। जो आपके भेद को जानता है उस व्यक्ति से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। रामायण में वर्णन है, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध ना ही कल्याणा। नौ व्यक्ति से विरोध कभी नहीं करना चाहिए। अगर उसे आप विरोध करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको घाटा लगेगा। वो कौन कौन है? शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद कवि भानस गुणी। शास्त्री, शास्त्री का मतलब होता है पाला, शास्त्री मतलब शास्त्र धारण करने वाला, नहीं शस्त्र धारण करने वाला, जिसके पास राइफल है या पिस्टल है, रिवाल्वर है, आपके पास कुछ नहीं है, उसे यदि आप विरोध करेंगे तो आपकी जान खतरा में पड़ सकती है। तो उसे विरोध नहीं करने का, बुद्धि से काम ले लेने का। आगे देखें, दूसरा हुआ भेद जानने वाला। अगर व्यक्ति आपके भेद को जानता है, आपने यहां ये कार्य किया है, तो उससे विरोध नहीं करने का, नहीं तो आपका भेद खोल देगा, तो आप संकट में पड़ जाएंगे, आपकी निंदा होगी। तीसरा, समर्थ स्वामी। अगर कोई व्यक्ति समर्थ है, धनवान है, समर्थवान है, शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली व्यक्ति से विरोध नहीं करने का, क्योंकि उसके आगे आप पार नहीं पाएंगे। और चौथा है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति तो मूर्ख होता है, उसे तो कभी लगना ही नहीं चाहिए। पांचवा है धनवान। अगर कोई धनवान है तो उसका विरोध न करें, क्योंकि वो धन से सबको खरीद लेगा, सबका मुख चांदी से मढ़ देगा, अपने पक्ष में कर लेगा और आप मारे जाएंगे। पांचवा धनवान। और छठवा है वैद्य। वैद्य का मतलब डॉक्टर से मतलब है, आयुर्वेद का डॉक्टर हो या ऐसे एलोपैथ का हो, चाहे होम्योपैथ का हो, चाहे धनवंतरी भगवान का अनुयायी हो, अगर उससे आप विरोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो हो सकता है दवा में या इंजेक्शन में विष दे देगा, तो आप मर जाएंगे। इसलिए डॉक्टरों से, वैद्य से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, उससे दोस्ती करके रखनी चाहिए। छठवा वैद्य हुआ। और सातवा हुआ भाट। भाट का मतलब होता है, मतलब इसको हम भाट जो होते हैं, ये बंदी इसको बोलते हैं, कवि बंदी, अच्छे भाट, हाँ बंदी। बंदी जो होते हैं, ये उन्हें भाट कहा जाता है, ये वंश प्रशंसक होते हैं, ये उसको गीत में ढाल करके चरित्र को गाते हैं। तो अगर भाट से आप प्रशंसक से विरोध करिएगा, तो आपको गीत बना करके सारी दुनिया में आपके अपकीर्ति को फैलाएगा। और कवि लोगों से भी विरोध नहीं करना चाहिए, वो भी कविता बना करके आपके चरित्र को गाने लगेंगे, तो समाज में आपकी निंदा होगी। एक बार मैं बिहार में प्रचार में गया था, ब्राह्मण थे तो दोनों भाई थे, एक भाई विरोधी था, इनकी संपत्ति को छीन लिया था, वो कविता जानते थे, तो बोले कि मैं इसको एक कविता में ढील दिया और सबसे सबको सुनाने लगा, सुनकर को बहुत लज्जित हुआ है, उसकी निंदा होने लगी, अंत में उसको देना पड़ा। तो कहने का भाव यह है कि कवि लोगों से यदि आप झगड़ा करेंगे, तो कविता बना करके आपके दुर्गुणों का प्रचार कर देंगे, तो आपकी निंदा होगी। और नौवा है रसोईया। भानस गुणी मतलब रसोईया का जिसमें गुण है, भोजन बनाने वाले, उससे कभी विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो भोजन में विष दे देगा। ये नौ लोग हैं, नव ही विरोध ना ही कल्याणा। नौ लोगों से विरोध करने से कभी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है, इनसे दोस्ती करके रहनी चाहिए। अच्छा, तो अपना वेश, राहु अपना स्वयं समझ गया, और छद्म वेश, बनावटी वेश धारण करके वो आ गया। देखिए, देवताओं की पहचान होती है, देवताओं की पहचान होती है कैसे, देवताओं के पहचान है कैसे, आप जानेंगे कि ये देवता है। दीपति इति देव, जिनके शरीर से प्रकाश निकलता है उसको देवता कहते हैं, जो दानी होते हैं। महाभारत में वर्णन किया गया है, कैसे आप जानेंगे कि ये देवता, देवताओं की ये पहचान है, देवताओं के शरीर में पसीना नहीं होता, ये पहचान है। और उनके पलकें नहीं गिरती, ये जो पलकें हैं ये नहीं गिरती, और उनकी माला कभी नहीं कुम्हलाती, सदैव नवीन बनी रहती है। और उनके शरीर पर मैल नहीं जमते, उनका शरीर मैला नहीं होता है, उनका शरीर बिल्कुल चमकता रहता है। और वे आकाश में स्थित रहते हैं,
धरती पर पैर नहीं रखते, क्योंकि उनके दृष्टि में धरती के लोग बहुत गंदे होते हैं, इसलिए धरती से ऊपर ही रह करके वे किसी वस्तु को ले लेते हैं। जब भगवान आते हैं तो ब्रज में वो आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, वो तो ब्रजभूमि में लेटते हैं, नहीं तो उनका कल्याण ही नहीं होगा। लेकिन प्रायः देवता लोग आकाश में रहते हैं, भगवान जो भी लीला करते थे आकाश में रहकर सब देवता अपने अपने विमान पर सवार होकर के दर्शन करते रहते थे। ये देवताओं की पहचान है, और ठीक इसके विपरीत मनुष्यों की दशा है। इनके शरीर में पसीना आती है, इनके पलकें गिरती हैं, देख लीजिए, इनके शरीर से दुर्गंध आती है, देवताओं के शरीर से सुगंध आती है। जो उर्वशी है, मेनका है, रंभा है, तिलोत्तमा है, इन सब अप्सराओं के शरीर से सुगंध आती है, ये पहचान है। और असुरों के भी ठीक इस असुर तो इसके ठीक विपरीत होते हैं, विरोधी होते हैं। तो देवता बन करके उन्होंने अमृत पान कर लिया, तो कहने का भाव है, एक बात सुन लें, देवता और दानव दोनों में अंतर यह है कि देवता बुद्धिमान होते हैं और असुर बलिष्ठ होते हैं। देवताओं से बलिष्ठ है असुर लोग, लेकिन देवता लोग बुद्धिमान हैं। एक बार असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग का कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता है, क्या कारण है? और देवता लोग मतलब सफलता प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग वंचित रह जाते हैं, कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग स्वार्थी होते हो, एक दूसरे का हित नहीं चाहते। ठीक है, इसका उत्तर हम कल देते हैं। ब्रह्मा जी ने भोज रखा, भोजन के लिए निमंत्रण दिया, कल तुम लोग भोजन करने के लिए आओ मेरे पास। तो देवता और दैत्य दोनों भोजन करने के लिए आए, दोनों की बुद्धि का परीक्षण लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि देवताओं दानवों के हाथ को लकड़ी से बांध दिया, हाथ में ऐसा लकड़ी बांधे कि ये हाथ इससे पूरा ऊपर नहीं आ सकता था, लकड़ी हाथ को बिल्कुल वो टाइट कर देती थी। हाथ बांध दिए, अब हाथ मुक्त आता नहीं, दोनों हाथों में ऐसे ही कर दिए। पहले असुरों को भोजन परोसे और भोजन में लड्डू था, बड़े बड़े लड्डू थे, कहे लड्डू को खाओ, असुरों की पंक्ति बैठ गई और लड्डू को खाने लगे, और उनका हाथ ऊपर आता ही नहीं। अब यहां से हाथ से इसे उठाते तो हाथ ऊपर उठता ही नहीं, तो लड्डू फेंकते तो कभी ललाट पर लगता, कभी नाक में लगता, कभी कुछ कोई मुख में ऐसे चला जाता, लेकिन खा नहीं पाए, मुख में भी प्रविष्ट नहीं हो पाया, उनको कोई धक्का मतलब लड्डू का धक्का लगता था, उनको कठिनाई हुई, भोजन नहीं कर पाए, सामने लड्डू है लेकिन खा नहीं पाए। वही प्रक्रिया ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी की, देवताओं का भी हाथ सेम नियम, देवताओं को भी हाथ में उन्होंने एक लकड़ी बांध दिया, लकड़ी बांध दिया जाए पूरा, तो ये पूरा टाइट हो जाएगा, मतलब ऐसा लकड़ी बांध देते कि हाथ आपका उठ नहीं सकता था। तो देवता लोग उन दोनों हाथों को बांध दिए, कहा भोजन करो। तो देवता लोग देखिए बुद्धि से काम ले लिए, अब हाथ उठता नहीं था, ऊपर नहीं आता था, लेकिन देवता लोग ऐसे उठाए लड्डू को, और लेकिन हाथ न बांधा गया था, ये तो मुख तो ये तो बांधा नहीं गया है, देवता लोग इसे झुक गए और दूसरा एक देवता दूसरे के मुख में डाल दिया। आप समझ रहे हैं, ये सहयोगी बन गए, एक दूसरे के सहयोगी बन गए, ऐसे ऐसे हाथ है ऐसे करके ऐसे झुक गए तो इसे मुख में डाल दिए इसे। तो देवता लोग भोजन कर लिए, जितने भी देवता बैठे थे सब एक दूसरे को ऐसा ही अपने पत्तल का भोजन एक दूसरे को खिला दिए, लड्डू खा लिए। तो देवता लोग लड्डू खा करके बिल्कुल आनंद में हो गए, और असुर लोग देख करके बहुत चक्के रह गए, उनके सामने देख रहे अरे ये तो खा लिए, हम लोग तो खा नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखा तुम लोग स्वार्थी हो, पक्का स्वार्थी हो, तुम लोग छिन्ना झपटना जानते हो, दूसरों को खिलाना नहीं चाहते हो, वो लड्डू तो तुम्हारे पास नहीं था ना, लेकिन तुम लोग नहीं खा पाए, लेकिन देखो ये लोग दूसरे का सहयोग करके खा लिए, दूसरे के माध्यम से खा लिए, इसलिए बुद्धि तुम लोगों से ये आगे है। उनके हाथ में देखिए अमृत का कलश है, असुरों के हाथ में देखिए अमृत का कलश है, अब मुनि जाकर के अमृत का कलश ले ली, और देखते ही रह गए, तकते ही रह गए, मुनि मोहन बनकर अदृश्य हो गई। तो देवता बुद्धिमान होते हैं और असुर जो होते हैं ये बलिष्ठ होते हैं,
ये अमृत पिए, अमृत पी करके जब अमृत पान कर लिए तो वर्णन किया गया है कि देवताओं में और दानों भयंकर युद्ध हुआ, उसमें असुर परास्त हो गए, देवता विजय को प्राप्त हो गए, लेकिन पुनः फिर असुरों को शुक्राचार्य जी जिला दिए बलि महाराज को, और पुनः असुर बलि महाराज स्वर पर आक्रमण किए तो विजय को प्राप्त कर लिए हैं। तब वामन भगवान के बन करके फिर लेकर के फिर अति माता को प्रदान के देवताओं को। तो कहने का भाव है कि छद्म वेश जो वेश है, छद्म वेश में बहुत लोग घूमते रहते हैं, तो देवता मायावी होते हैं, असुर भी मायावी होते हैं, लेकिन एक दूसरे को ठगने के लिए कोई कुछ भी स्वरूप बना सकता है, तो उन ठगों से सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए जो सूर्य और चंद्रमा जो बताए थे कि हम ये राहु है, इसीलिए अमावस और क्या बोलते हैं पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन आप देखिए ये सूर्य और चंद्रमा पर राहु आक्रमण करता है, बदला लेता है कि तुम लोगों ने मुझको क्यों बताया, बदला लेता है भेद। अगर आप दूसरे का भेद बताएंगे तो आप एक दूसरे के शत्रु बनेंगे, याद रखने का, एक दूसरे का शत्रु नहीं बनना चाहिए। कहने का भाव यहां ये है, आज भी राहु बदला लेता है, जिसको हम चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। जब वो ग्रसता है, पकड़ता है, तब भगवान अपना चक्र छोड़ते हैं, सूर्य और चंद्रमा भगवान का स्मरण करते हैं, तब भगवान अपना चक्र छोड़ते हैं, तब जाकर के राहु वहां से भागता है, चक्र को देख करके दूर हो जाता है, तब चंद्रमा और राहु की जान बचती है, फिर वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो है राहु जो अमंगल ग्रह है। अच्छा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वक्र चंद्र में ही ग्रसे ही न राहु, राहु किसको ग्रसता है, सीधे चंद्रमा को ग्रसता है, टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता है, समझ रहे, टेढ़े चंद्रमा, जो चंद्रमा टेढ़ा होता है उसको राहु नहीं ग्रसेगा, अपने पूर्ण आकार में जब चंद्रमा आएगा तब राहु उसको ग्रसेगा। मतलब टेढ़े व्यक्ति का मतलब है, टेढ़े व्यक्ति से सब डरते हैं, कहने का भाव ये है ये कुछ कर देगा, मार देगा। वक्र चंद्र में ग्रसे न राहु, तो ज्यादा सीधा भी नहीं बनना चाहिए, ज्यादा सीधा रहिएगा तो आपको लोग तंग करेंगे। नारद जी बोले थे ना एक सांप को कि तुम सीधा हो जाओ, बिल्कुल किसी को काटना मत, वो किसी को नहीं काटता था, लड़के उसको ढेला से मारने लगे, कहे मैं बहुत तंग आ गया, मैं क्या करूं, नारद जी का उपाय बताया, फुफकार मारो। जब सर फुफकार मारता तो सब भाग जाते इधर उधर। तो कहने का भाव यह है कि ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, ज्यादा सीधा बन जाइएगा तो आपको हानि होगी। वक्र चंद्र में ग्रस राहु टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता, जो टेढ़े चंद्रमा है फिर कहां विराजता है, टेढ़े चंद्रमा को शिव जी अपने माथे पर रखते हैं, समझते हैं ना, जो समुद्र से चंद्रमा निकला ना उस चंद्रमा को शिव जी को दिया गया, क्योंकि शिव जी विष पिए थे, चंद्रमा में शीतलता होती है तो ताकि विष गर्म होता है, शिव जी को चंद्रमा शीतलता प्रदान करे, तो शिव जी के माथे पर चंद्रमा विराजमान रहता है। विद्वान कहते हैं कि चंद्रमा में र और म अक्षर है, इसलिए शिव जी चंद्रमा को धारण करते हैं, चंद्रमा भगवान के भक्त हैं। तो टेढ़ा कहने का भाव यह है, आप इस कथा को जानते हैं, सुनते भी हैं कि बकरा को बलि दिया जाता है, सिंह को कोई बलि नहीं देता। देखिए ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, बकरा को बलि दिया जाता है, सिंह के पास कोई नहीं जाएगा, बकरा में उतनी शक्ति नहीं होती है, बकरा कमजोर हो जाता है, मतलब कमजोर व्यक्ति को सब सताते हैं, कहने का भाव है। टेढ़े व्यक्ति के पास कोई सिंह बलिष्ठ होता है, सिंह में बाघ में और चीता में अंतर होता है, याद रखिए सिंह सबसे बलिष्ठ होता है, उसका पहचान है कि सिंह के गर्दन में बाल होते हैं, पूरे बाल होते हैं, उस सिंह का पहचान है, और बाघ चितकबर होता है, और चीता जो होता है ना वो भी लंबा होता है, बिल्कुल एक बन्ना ऐसा होता रहता है, दौड़ने में बहुत प्रवीण होता है, लेकिन सिंह बहुत बलिष्ठ होता है। श्री जो शिकार करता है, स्वयं जो शिकार करता है उसी शिकार को खाता है, वो किसी दूसरे का जूठन नहीं खाता है। बाघ कपटी होता है, वो छिप करके किसी पर आक्रमण करेगा, लेकिन सिंह डरता नहीं है क्योंकि वो बलिष्ठ है। सिंह राजा माना जाता है, जंगल का वो राजा है। बाघ में और सिंह में लड़ाई हो जाए तो सिंह विजय को प्राप्त होता है। सिंह बहुत बलिष्ठ होता है। जो सिंह एक बार सिंहनी का संग करता है, बार बार नहीं करता है, और जिस शिकार को करता है उसी शिकार को सह खाएगा, किसी दूसरे का जूठन नहीं खाएगा। लेकिन जो बाघ होता है ना, चीता, एक दूसरे का जूठन खाते हैं, जिससे सियार किसी के भी जूठन को खाता रहता है। व्यक्ति को सिंह जैसा होना चाहिए, सियार जैसा नहीं होना चाहिए। कहने का भाव यह है, नारी जैसे पतिव्रता नारी होती है, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और जो पुंसचल स्त्री होती है वो हजार पुरुषों का संग करती है, उसके एक नहीं हजारों पति होते हैं। सी एक सिया सी केवल एक ही, जो शिकार करेगा उसी में खाएगा, किसी दूसरे का जूठन नहीं खाएगा। जो दूसरों का जूठन खाता है, या कोई चबाए हुई स्त्री को चबाता है, या किसी को भी खाता है, दूसरे का जूठन खाता है, तो वह सिंह नहीं है, वो सियार है। कहने का मतलब है, एक घाट पर सियार सिंह और सियार पानी पीने लगे, समझे को सियार है, सिंह नहीं है। सिंह जूठन नहीं खाता है, चबाए हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। कहने का मतलब है, सिंह बलिष्ठ होता है, पहचान है। व्यक्ति को सिंह बनना चाहिए, सियार नहीं बनना चाहिए। कहने का भाव है, यहां ये शिक्षा दी जाती है कि कमजोर व्यक्ति को सबको सताते हैं, थोड़ा टेढ़ा रहेंगे आप, थोड़ा अपना स्वरूप दिखलाएंगे ना, तो आपके पास जल्दी कोई नहीं जाएगा। टेढ़े व्यक्ति सब वक्र चंद्र में ग्रसित ना हो, राहु ग्रसता है लेकिन टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता है, सीधे चंद्रमा को ग्रसता है, जो पूरे आकार में आ जाता है। तो सीधे व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति तंग करना, तो उतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। देवता भगवान का शरण लिए, ध्यान से सुनिए, देवता को भगवान अमृत पिलाए, क्यों? कि देवता भगवान का शरण लिए, इसलिए देवता अमृत पिए, असुर भगवान का शरण नहीं लिए, इसलिए उन लोगों को अमृत नहीं मिला। वो भगवान के शरण में नहीं आए, असुर भगवान के विरोधी होते हैं, इसीलिए उनको अमृत नहीं पिलाया गया, क्योंकि वो शरण में आए तो भगवान के हाथ से छीन लिए। छीना झपटी नहीं करना चाहिए। महाराज जी भी कथा में बताते हैं, कभी भी वैष्णव समाज में प्रसाद चलता हो, प्रसाद बंटता हो, तो आप धैर्य रखें, देवता के समान रहे, वारी वारी से जाकर के आप ले लें, छीना झपटी न करें। अगर छीना झपटी करेंगे तो आश्रय गुण, वो आश्रय गुण है, आश्रय गुणों को नहीं अपनाना चाहिए, देवतुल्य गुणों को अपनाना चाहिए, ऐसे समाज में शांति बनी रहती है। देवता भगवान के शरणागत हुए, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा किया। मनुष्य को भगवान के शरण में जाना चाहिए, जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म होता है। असुरों का ये स्वभाव है कि वो भगवान के शरण में नहीं जाते, वो विरोध करते हैं, और देवता भगवान के शरण में जाते हैं। इसे भगवान ने शिक्षा दिया। देखिए, भगवान को शरणागत वत्सल कहा जाता है। आप कितना हो पाप किए हो, क्यों भगवान कहते हैं कि कोटि विप्रवद लाग ही जाहीं, आए शरण तजो नहीं ताहीं। आप करोड़ों ब्राह्मणों का यदि वध कर दिए हो हैं, और करोड़ों ब्राह्मणों को वध करने के बाद भी यदि आप भगवान के शरण में आते हैं, तो भगवान आपको नहीं त्याग सकते, आपको भगवान अपने शरण में रख लेंगे। आए शरण तजो, यही तो भगवान की विशेषता है, क्योंकि आप उनके शरणागत हो गए। भगवान शरणागत वत्सल है, भगवान के शरण में जाना चाहिए। शरणागत पर एक दृष्टांत दिया जाता है, जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे कथा में आपको सब विद्वान लोग बताते हैं, जब राम जी वन में भ्रमण कर रहे थे तो राम जी के पांव में बहुत से कांटे चुभ गए थे, भगवान के चरण में आ गए थे, शरणागत हो गए थे। जब सीता जी पांव को दबाने लगी, सहलाने लगी, तो खर से उनके कर कमलों में कांटे लगे, तो सीता देवी ने कहा, प्रभु ये ये कांटे आपके पांव में चुभ गए, इन्हें मैं निकाल दूं? राम जी का नहीं सीते, मेरे चरणों में आकर कुछ शांत चित बैठे हुए हैं, उससे मुझको कोई दुख नहीं है। अगर मुझे मेरे चरणों से उसको निकाल दोगी तो कहां जाएगा? मेरा ये स्वभाव है, जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसे कभी नहीं त्याग सकता, नहीं निकालने दिए। और कंटक विघ्न पैरों से भगवान साकेत धाम चले गए, लेकिन निकालने नहीं दिए, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है, सीता जी ने हनुमान जी को बताया था कि जो व्यक्ति शरणागत धर्म में अपराधी की भी रक्षा करनी चाहिए, कि कोई कितना हो अपराधी व्यक्ति यदि आपके शरण में आ गया तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये धर्म है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, सीता जी ने हनुमान जी से सुनाया था, बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि एक जंगल में एक बाघ एक व्याधा पर आक्रमण कर दिया। व्याधा ऐसे घूम रहा था, लकड़ी काटने वाला, बाघ ने देखा और उसके ऊपर आक्रमण किया, तो व्याधा जो है वो डर करके झट से वो पेड़ पर चढ़ गया। और जिस पेड़ पर चढ़ा उस पेड़ पर एक भालू भी रहता था, तो व्याधा तो ऊपर चला गया, बाघ आ गया नीचे, बाघ चढ़ा नहीं, वो भी छलांग मारता है, याद रखिए चीता भी छलांग मारते हैं, छलांग मारने में बड़े बड़े जानवरों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर भालू था, बाघ नीचे था, और व्याधा और भालू दोनों पेड़ पर, भालू पहले से ही था पेड़ पर हो गए, तो बाघ भालू से बोलता है, तो भालू तुम इस व्याधा को, इस शिकारी को पेड़ पर से नीचे गिरा दो, ये मेरा आहार है। तो भालू ने कहा, हे बाघ जी सुनिए, ये मेरे शरण में है, ये जो व्याधा है मेरे शरण में आया है, मेरे पास आया है, और वैदिक शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति शरण में आ जाता है उस शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, तो मैं इसे नहीं त्याग सकता, मैं इसे नहीं गिरा सकता, कहने का भाव यह है। ऐसा कहकर भालू चुपचाप हो गया और ऐसे सो गया। तब फिर बाघ बोलता है व्याधा से, ओ व्याधा तुम इस भालू को ऊपर से नीचे गिरा दो। तो वो व्याधा दुष्ट था, वो बाघ की बातों में आ गया, और जो भालू उसकी रक्षा किया था उस भालू को ढकेल दिया। तो भालू को ढकेल दिया, तो भालू पेड़ पर चढ़ने में पकड़ने में बहुत प्रवीण होते हैं, तो ऊपर से तो गिराया, फिर दूसरे डाल पर डाल को आकर पकड़ लिया भालू। अच्छा, व्याधा ने तो बहुत गलत कार्य किया, तो अपने धर्म को नहीं निभाया। फिर बाघ कहता है भालू से, देखा ये व्याधा कितना दुष्ट है, तुमको ढकेल दिया नीचे, ऊपर से नीचे ढकेल दिया, तुम बच गई, उसको अब तुम ढकेल दो नीचे, उस व्याधा का तुम नीचे करो, वहां से पुश करो। भालू ने कहा, नहीं, ये शरणागत, इसे शरणागत धर्म का अपमान होगा, कुछ भी इसने गलती किया हो, जो भी, भगवान ऐसे होते हैं कि वो कोई कितना हो बड़ा पाप कर्म किया हो, क्यों ना हो, यदि भगवान के शरण में जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हम शरणागत धर्म की ऐसी मर्यादा है, जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इसे वध नहीं कर सकता। भालू ने नहीं गिराया, उसकी रक्षा किया। तो कहने का बात यह है, भाव यह है कि भगवान शरणागत वत्सल है, देवता भगवान के शरण में गए, इसलिए भगवान ने उनको अमृत पिला दिया, उन लोगों का आहार था, और असुरों का आहार अमृत नहीं था, इसलिए भगवान उस शरण में भी नहीं गए, इसलिए उनको नहीं पिलाया। तो प्रस्तुत श्लोक से ये शिक्षा मिलती है, अमृत जो अमर बना देता है, माने दीर्घजीवी बनाता है, और हम लोग पिछला बार जो क्लास दिया था उसमें बताया था कि अमृत क्या चीज है, ये तो तुक्ष अमृत है, इसको पीने से आदमी दीर्घजीवी बनता है, लेकिन सबसे बड़ा जो अमृत है वो कथामृत है और नमामृत है। जब परीक्षित महाराज खुद, परीक्षित महाराज को जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर आए थे, अमृत तो उनके पास था ही, तो फिर कलश लेकर क्यों आए हो? ये पियेंगे तो इनका विष दंत उतर जाएगा। उस अमृत को पीने से जन्म मृत्यु का चक्र पड़ा रहता है सोमरस का पान करने से, और इस कथामृत को पीने से जो हम लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, ये नवामृत है। अमृत का मतलब होता है जो मरण प्रक्रिया को समाप्त कर दे, उसका नाम है अमृत। सोमरस का पान करने से भी आपकी खतरा बनी रहती है, स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं, पुण्य खत्म हुआ आप नीचे आए, लेकिन इस अमृत को पान करेंगे तो स्वर्ग से ऊपर चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, और वहां जीव जा करके सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसलिए आप जहां भी रहें वहां तुच्छ अमृत को छोड़ करके दिव्य अमृत का पान करें। भक्ति रस अमृत है कलयुग में, इसका सेवन करें। इस अमृत को पीने से व्यक्ति अमर हो जाएगा और भगवत धाम जाकर सदा के लिए सुखी हो जाएगा। देवताओं के गुण को अपनाना चाहिए, असुरों को गुण को नहीं अपनाना चाहिए, आश्रित गुण से दुख होता है। तो प्रस्तुत श्लोक में ये बताया गया है कि शिक्षा मिलती है कि वैष्णव को अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए, अपने भेष में रहना चाहिए और छद्म भेष, हाँ भगवान ने भी शिक्षा दिया, ये भी याद रखे, मैं भूल गया। अगर कोई आपको धोखा देता है, जिसे छद्म भेष में आया, धोखा देता है, एक कहावत है अंग्रेजी में टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा, उसका उत्तर वैसा देना चाहिए। जैसे सुपनेखिया राम जी के पास में गई सुपने का, तो क्या कहा कि मैं कुमारी हूं, जबकि वो विवाहित थी, उसके पति को रावण ने बध कर दिया था, लेकिन राम जी के पास जाकर बोलती है मैं कुमारी हूं, तो भगवान ने भी उसी भाषा में बात की, यदि तुम कुमारी हो ना तो मेरा भाई लक्ष्मण भी कुमार है जाओ उनके पास, सठा सत्यम, उसी भाषा में बात करिए। भक्त को बिल्कुल प्रवीण होना चाहिए, टिट फॉर टैट जानना चाहिए, जैसे को तैसा, बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए, जो जैसा व्यवहार करता है ना उसके साथ वैसे व्यवहार करेंगे तब आपको उसको पता चलेगा कि हाँ ऐसा कार्य करने से ऐसा फल मिलता है। तो यहां पर भेद का भेष बदलने का वर्णन किया गया है, और सूर्य और चंद्रमा पुनः इसको सुन ले अंतिम बात, प्रस्तुत प्रसंग से वर्णन है कि सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा, यहां तक भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा, किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए, इस तरह राहु पहचान लिया गया। मुख्य इसी शिक्षा ये मिलती है कि मनुष्य को किसी का शत्रु नहीं बनना चाहिए, जिसे युधिष्ठि महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है। देवता और दानों में शुरू से ही एक दूसरे के प्रति दुश्मनागत है, इस जगत का ऐसा वातावरण है, आपस में व्यक्ति को मिलजुल के रहना चाहिए, जहां तक अपना जैसे युधिष्ठि महाराज व्यवहार अपनाते थे वैसे रहना चाहिए। कालचक्र तो सबको नचाता है, अगर किसी का भेद आप खोलेंगे तो आपके जीवन संकट में पड़ सकता है। और जहां भी हम सब रहे सदैव भगवान नवामृत का पान करते रहे, तुक्ष अमृत विषय रस के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, दिव्य रस भक्ति रस के चक्कर में रहना चाहिए, भक्ति रस का हम लोग सदैव पान करें, इसी में मानव जीवन का कल्याण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा कथा की। मेरा एक प्रश्न है कि भगवान गीता में बताते हैं ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तन अर्जुन, ब्रह्मा लोक से लेके पाताल लोक से सबका मृत्यु है, तो भगवान के हाथ से अमृत पीने के बाद भी उनका मृत्यु क्यों होता है? देवताओं का, उनका भी 100 साल है।
जिस अमृत को भगवान पिलाए हाँ। वो दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला अमृत था, अमर बनाने वाला नहीं था, सोमरस उसको बोलते हैं। जो अमृत वो निकला था उसको पीने से उनका शरीर दृष्ट पुष्ट होता है, वो दीर्घ जीवी बनते, माने लंबी आयु उनकी होती है। इसके बाद जब उनका पुण्य क्षीण होता है तो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंत, उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः उसको मृत्यु लोक में भी आना पड़ता है। वो अमर बनने कहने का मतलब वो दीर्घ जीवन प्रदान करता है वो अमृत, वो आपको वैकुंठ नहीं पहुंचाएगा, विषय भोग का सेवन कराएगा, शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन लंबी आयु देगा, लेकिन अमर नहीं बना सकते, उनका जीवन संकट में पड़ा रहता है। लंबी आयु प्राप्त करेंगे उस अमृत को पान करने से, भगवान उस अमृत को पान कराए थे, दूध से जो अमृत निकला था।
दूसरा प्रश्न ये है कि बोली कि मामा मरीज जो है वो कालाने में बने थे, लेकिन सोने का हरिण भी तो वही बने थे ना?
हाँ वही बना था, वो मारिच है विश्वामित्र के जग में, मारिच सुबाहु का नाम सुनेंगे, जो दोनों भाई थे। यज्ञ में जब उपद्रव मचा रहा था, हड्डी इत्यादि सब डालता था, तो भगवान ने बिना फरका एक बाण मारे थे, और जो विद्वान लोग कहते हैं ना कि वो समुद्र उस पार गिरा, मारिसस में जाकर के गिरा, वो मारिच उसी के नाम पर मारिसस है। तो भगवान ने सोच लिया कि हमारी लीला में सहायता करेगा, कहने का मतलब है मारिच भगवान की लीला में सहायता करेगा, इसके लिए भगवान ने उसका वध नहीं किया, सुबाहु का वध कर दिया। तो वो मारिच वही हिरण बना था, सोने का मृग बना था। कहा नहीं, वध नहीं किए थे ना, बिना फर का बाण मारे थे, उसका जान नहीं लिए थे, नहीं समझे? मारिच को जान से नहीं मारे थे, उसको बहुत दूर फेंक दिए थे, क्योंकि भगवान समझ गए कि ये मेरी लीला में सहायता करेगा, तो वही सोने का मृग बन करके आया, तो सीता जी का हरण हुआ।
जो कालने में बने थे वो भी मारिच
है? कालने में तो हनुमान जी का मार्ग रोकना चाहता था, जब संजीवन बूटी लाने के लिए जा रहे थे तो उनका मार्ग रोकना चाहता था कपटी महात्मा बन करके, कि संजीवनी विद्या न ला सके।
जो चंद्रमा है शिव जी के चटाई में, जो चंद्रमा है ये चंद्रमा दो अलग अलग,
ये चंद्रमा समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो शिव जी को दिया गया, उसमें वर्णन है। और चंद्रमा तो पहले से एक देवता जो प्रकाश फैला रहे।
देखे जो समुद्र मंथन हुआ था, चार अवतार भगवान किए थे, मोहिनी रूप, धन्वंतरी और कच्छप, और ऊपर में भी जो भगवान का कृष्णा स्वयं भगवान भी वहाँ पे थे।
क्या
भगवान चार अवतार ग्रहण किए?
भगवान तो अपना विस्तार किए ना, एक लक्ष्मी नहीं, वो तो धन की लक्ष्मी है ना, हजारों आप पढ़े ना, चिंता मणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षा वृतेश सूर्य रविपाल यंतम, लक्ष्मी सहस्त्र, एक लक्ष्मी नहीं, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करते हैं। अब केवल धन लक्ष्मी की, वो तो धन की लक्ष्मी थे, भगवान अपना विस्तार अनेकों रूपों में कर सकते हैं। कौन जैसे? हाँ अजित हैं, कच्छप हैं, धन्वंतरी हैं, मोहिनी हैं, ये चार अवतार। और कुछ? माइक दीजिए। हाँ बोलिए प्रभु। आए चंद्रमा मन सो जाता। हाँ देवता हैं वो लोग, चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, उसके अधिष्ठात्री देवता हैं। धन्यवाद जी जी, बराबर है। हाँ हाँ वो देवता है,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
उस लोक के देवता हैं, चंद्र एक लोक है, उसके एक अधिष्ठात्री देवता हैं, बराबर है। जैसे को तैसा मतलब उतना, एक बात सुन लीजिए, नहीं नहीं इसका भाव ये नहीं, इससे बहुत से, अच्छा ठीक है, इसके बहुत से अर्थ आएंगे। जैसे मान लीजिए ये मंदिर जो बन रहा था, और मंदिर में बनने पर दूसरे लोग आक्रमण कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको जहां से हो सके वैसा करना चाहिए ना। राम जी ने खुद भगवान अवतार लेकर के बताए, अगर वो उसकी भाषा को आप समझिए, वो जिस भाषा में बात करता है, कहने का मतलब उसकी भाषा को समझ करके उसके साथ उसका वैसा व्यवहार करना चाहिए, मेरा कहने का भाव है। ये नहीं कि वो गाली देता है तो हम भी गाली देंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है। उसके मनोवृत्ति को समझ करके, वैष्णव बुद्धिमान होते हैं, समझ करके उसका उसको उपचार देना चाहिए, कहने का भाव है। उसको दंडित करना चाहिए, माने कहने का भाव कि नीति को जानना चाहिए, असली बात यहां ये है। हाँ प्रभु हम ये नहीं कहते हैं, वैष्णव सिद्धांत सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन यहाँ
बाहरी सिद्धांत में लोग बोलते हैं कि तुमको कोई ईंट मारता है तो पत्थर मारो, तुमको कोई तो, लेकिन वैष्णव सिद्धांत में तीट फोटा इसका,
इसको बुद्धि के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए वो खुद छन्न अभेश बनाया, कोई भी आता है, भगवान ने भी मोहिनी स्वरूप खुद धारण किया, मोनेश्वर धारण करके देखिए अमृत देवताओं को पिला दिया। माने वैष्णव बुद्धिमान होते हैं। टीट फॉर टैट का मतलब जैसा समय आता है जैसो को तैसा, समय जैसा साथ देता है, समय जो कहता है उसके अनुसार चलना चाहिए। चुप रहने का समय है तो वहां चुप रहने का। देश काल नियम को वैष्णव तो देश काल नियम प्रस्तुति विचार करके चलना चाहिए। तो उतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई वस्तु ले जाए आप कुछ मत बोलिए, कुछ मत क्या आपको भगवान को कोई कुछ भी करे आप चुपचाप बैठे रहिए, ऐसे सीधा मत रहिए, वैसा सीधा मत बने। आपको रक्षा करना धर्म है, भगवान है, इनकी जब सेवा में है तो सेवा का काम है सुरक्षा करना। कोई आक्रमण करता है तो क्या आप चुप रहेंगे? हनुमान जी क्या चुप रहे लंका में जाकर?
दूसरा एक प्रश्न
सुनिए, हनुमान जी वैष्णव है, जब लंकावासियों ने मारा तो हनुमान जी क्या बोले? जिनमु ही मारा तिनमय मारे, उसने मारा मैंने भी मारा, हनुमान भी तो वैष्णव है ना, तो फिर क्या वो वैष्णव नहीं है हनुमान जी? यहां सब वैष्णव बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा कहने का भाव वो नहीं है कि कोई गाली देता है तो इसी गाली दीजिए। टीट फॉर टैट का मतलब एक नीति है, जैसे को तैसा, नीति जाननी चाहिए, मेरा कहने का भाव है। भगवान नीति से काम लेते, निष्कर्ष ये।
दूसरा प्रश्न है कि भेद का बात कह रहे थे तो जैसे विभीषण रावण के अमृत भेद को जानता था
जी,
घर के भेदी लंका
लंकाडा,
तो भेद का वैष्णव सिद्धांत में बड़ा सुंदर व्याख्या हाँ। किया गया है कि भेद भी कई तरह के होते हैं
जी।
एक होता है किसी का हित करने वाला, तो भेद को अनुकूल दृष्टि से ये करता है, लेकिन विभीषण जो है भेद दिए भगवान राम को, तो क्या भगवान राम तो ऐसे सर्वज्ञ थे, जानते थे, लेकिन प्राकृत स्तर पर रावण को यह लगा कि विभीषण ही भेद दिए इसलिए हमारा अभी सर्वनाश हो जाएगा। तो भेद देने वाले को आदमी प्रायः समझ मिलते हैं कि इसने ये किया, ओके भेद घर के भेदी लंका डाही जैसे कहा थे समाज में।
सही बात है।
तो भेद भी अगर किसी का खुलने से कल्याण हो जाता है, किसी के कमजोरी हाँ। को कहने से प्रकाशन करने से उसका सुधार हो जाता है,
कहना चाहिए।
तो वैष्णव इस सिद्धांत पर करते हैं,
ठीक है, ये बात ठीक है।
और किसी को गाला काटने के लिए भेद नहीं खोलते हैं,
उसका
सुधार के लिए भेद को कहा जाता है कि उसका सुधार हो, प्रगति हो, वैष्णव सिद्धांत
बराबर है। भेद और अभेद, माने भेद को जानना चाहिए, कहाँ भेद खोलना है कहाँ नहीं खोलना है, तो वैष्णव बुद्धिमान होते हैं, समझ आते।
किसी की कमजोरी है तो उसको वैष्णव लोग सुधारने के लिए प्रयास करते हैं,
तो इसके बारे में ये बताया गया है सुधारने के लिए। अगर आप किसी के भेद को जानते हैं कि इसने गलत कार्य किया है मान लीजिए, तो नीति यही कहती है कि पहले उसी व्यक्ति से जाकर प्रेम से मिलना चाहिए, उस व्यक्ति से स्वयं प्रेम से मिलना चाहिए, अन्य को कहने से कोई फायदा नहीं। आप उसी व्यक्ति से प्रेम से कहिए तो विरोध भी नहीं होगा और निपटारा भी होगा।
यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा जो है, क्या भगवान तो सर्वज्ञ थे, जानते थे,
जानते थे,
लेकिन सूर्य चंद्रमा ज्यादा बुद्धिमानी दिखाए
हाँ,
के चलते उनके ऊपर
बराबर बराबर है। भगवान अंतर्जामी वो भी जानते थे, कैसा नहीं कि राहु है, जानते थे, तो वही भेद बताए तो उसको उसका मजा वो चखाता है। कहने का मतलब ये है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनका भेद बताएंगे तो आपके ऊपर वह आक्रमण करें, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन अगर आप उससे प्रेम से मिलेंगे तो वो व्यक्ति खुश हो जाएगा। जानते हुए भी व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धि माने विवेक से काम ले लेना चाहिए, कि तो स्वयं उसी से कर दें वो मान जाएगा, नहीं तो आप चुप रहिए क्या करेंगे आप। हित है कहाँ, हित है कहाँ, अहित है, वैष्णव सिद्धांत संग्रह यही समझाता है, उसको वैसा समझ करके प्रकट करनी चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।